भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 29। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सच्चन्ते गुण कर्मसु दान कृतस्विदः मन्दा उत्सन्नितन विचालये। अनुवाद श्री गोपाल जी के द्वारा। माया के गुणों से मोह ग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। भगवान इस श्लोक में बतला रहे हैं, जो लोग भोगों में आसक्त हैं, वो गुणों के द्वारा किए जाते हुए कर्मों में आसक्त भी होते हैं और उसमें प्रसन्न भी रहते हैं। पिछले श्लोक में हमने यह बात देखी थी कि कर्म कौन करता है, वास्तव में कर्म कौन करता है, कर्म कौन करता है, हम करते हैं कि गुण करते हैं, गुण करते हैं। वास्तविकता कर्म गुण करते हैं, गुणों के द्वारा कर्म होते हैं। यहां पे भगवान क्या बता रहे हैं इस श्लोक में, जो लोग भोगों में आसक्त है अर्थात वो लोग गुणों के द्वारा किए जाने वाले कर्म में भी आसक्त है। जो लोग भोगों में आसक्त हैं, वो गुणों के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में आसक्त हैं और वो आसक्त रहने में प्रसन्न भी रहते हैं, उस आसक्ति को एंजॉय करते हैं। जो लोग विषय यहां कहते भगवान बतला रहे हैं कि जो ऐसे विषयों में आसक्त है वो लोग विषयों में आसक्त भी रहते हैं, गुणों के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में भी आसक्त रहते हैं और इस आसक्ति में वो प्रसन्न रहते हैं। किसी व्यक्ति से कहो कि क्या आसक्ति छोड़ दो, क्या आसक्ति कर रखते हो, क्या भौतिक आसक्ति रखते हो, तुरंत क्या कहते हैं, क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या प्रॉब्लम है। यदि हम आसक्त है तो आपको क्या प्रॉब्लम, हम सुखी है, हम आसक्त है सुखी है, आपको क्या तकलीफ है, प्रसन्न है, आसक्त है कर्मों में, गुणों के गुणों से प्रभावित हो रहे हैं, गुणों के बंधन में फंसे हुए हैं, परंतु उसको भी एंजॉय, कहते हैं हम प्रसन्न है। तो यहाँ प्रकृते गुण समुदास जनते गुण कर्म स्वर्था, यह पुरुष ऐसे लोग प्रकृति के इन गुणों के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में नित्य आसक्त रहते हैं। जो लोग, किन लोगों की बात हो रही है यहाँ पे, भगवान किन लोगों की बात कर रहे हैं, जो भौतिक कर्मों में आसक्त हैं, अर्थात जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं है। भगवान यहाँ पे जिन लोगों, उन लोगों की बात कह रहे हैं जो लोग कृष्ण भावना भावित, कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, जो लोग कृष्ण भक्ति में नहीं है, कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, कृष्ण भावना भावित नहीं है, उनकी बात कृष्ण ही कह रहे हैं। वो कैसे होते हैं, उनके विषय में भगवान कह रहे हैं, वो कैसे होते हैं, वो प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा सम्मोहित रहते हैं, हिप्नोटाइज रहते हैं, प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा वो मोहित रहते हैं, सम्मोहित रहते हैं, है ना। कौन लोग, जो कृष्ण भावना भावित है, दोज आर नॉट कृष्ण कॉन्शियस, जो कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, कृष्ण भावना भावित नहीं है, कृष्ण भक्त नहीं है, फिर वो कोई भी होने दीजिए, वो क्या होते हैं, नित्य तीन गुणों के प्रभाव में रहते हैं। और केवल तीन गुणों के प्रभाव में रहते हैं इतनी ही बात नहीं है, उस प्रभाव में सम्मोहित रहते हैं, मोहित रहते हैं। और केवल इतना ही नहीं, केवल मोहित रहते हैं, उस अवस्था को, उस मोहित अवस्था को, उस बद्ध अवस्था को वो एंजॉय करते, प्रसन्न रहते हैं उससे। कितनी बड़ी दुख की बात है, कितने बड़े दुख की बात है। तो ऐसे कौन लोग हैं, पहला प्रकार है सत्वगुणी लोग, सत्वगुणी, जिनके पास सत्वगुण है, जो सत्वगुण के प्रभाव में है। सत्वगुणी कैसे बंधन में आ जाते हैं, कैसे आसक्ति में फंस जाते हैं, तो सत्वगुणी है, कैसे आसक्ति में फंसते हैं, कौन सी आसक्ति होती है सत्वगुणी लोग, आध्यात्मिक आसक्ति तो अच्छी अच्छी बात, सकाम कर्म और दूसरों का परमार्थ में भी स्वार्थ देखते हैं, स्वार्थ में परमार्थ देखना चाहिए, परमार्थ में स्वार्थ देखते हैं, आपके लिए मैं कुछ कार्य करूंगा लेकिन मेरा आगे क्या लाभ होगा, उसके अनुसार मैं आपके लिए कार्य करूंगा। तो सत्वगुणी लोग सुख और ज्ञान, सत्वगुणी लोग सुख और ज्ञान में आसक्त होने के कारण बंधन में आ जाते हैं। क्या आसक्ति रहती है, सुख चाहिए, किसी को दुख देके नहीं, अपने कर्तव्य कर्म करके मुझे क्या प्राप्त करना है, सुख प्राप्त करना है, कौन सा शारीरिक सुख, मुझे क्या करना है, एकदम अच्छा रहना है, मुझे किसी को तकलीफ नहीं देना है, धर्म के अनुसार जीवन यापन करना है, किसी का बुरा बुरा नहीं सोचना है, बुरा नहीं सोचना है, अच्छे काम करना है, पुण्य के कर्म कर, पुण्य कर्म करना है, और ये सब करना है किसके करना है, सुख की प्राप्ति, कौन से सुख की प्राप्ति, इंद्रिय सुख की प्राप्ति। और ये इंद्रिय सुख की प्राप्ति के लिए फिर क्या होता है, ज्ञान प्राप्त किया जाता है, सुख की प्राप्ति और ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान इसलिए प्राप्त किया जाता है ताकि इंद्रिय भोग मिले, शास्त्रों का ग्रंथों का अध्ययन भी होता है, शास्त्रों का ज्ञान भी प्राप्त किया जाता है, उस ज्ञान का उपयोग किसलिए होता है, सुख के, इंद्रिय सुख की प्राप्ति के। तो यह भी तो बंधन ही है। वास्तविक अवस्था क्या है, वास्तविक अवस्था यह है कि मुझे केवल क्या मनाई थोड़ी है, मनाई है आत्म सुख का विचार कीजिए, मनाई किसने किया? बौद्धिक सुख, मानसिक सुख, शारीरिक सुख, आत्मिक सुख, इसका विचार कीजिए। यह मनुष्य का कर्म है। परंतु क्या होता है, सतोगुणी व्यक्ति किसका विचार करते हैं? सुख का विचार करते हैं, इसलिए ज्ञान प्राप्त करते हैं। उनको मार्ग तो दिख जाता है सुख के प्राप्ति का, ज्ञान मार्ग तो दिख जाता है, परंतु उस मार्ग के वो आगे तक न जाते हुए बंधन में आ जाते हैं, कर्मों के बंधन में फंस जाते हैं। क्योंकि सुख को प्राप्त करने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा ना, बिना कुछ के सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ करना होगा, कर्म करना होगा, और कर्म करने से बंधन में फंस जाते हैं। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है, जो व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है, कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, वो तीन गुणों के बंधन में आ जाते हैं। पहले सतोगुणी व्यक्ति होते हैं जो सत्व गुण के बंधन में आ जाते हैं, जिसके कारण वो ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में लग जाते हैं। दूसरे व्यक्ति है रजोगुण। रजोगुणी व्यक्ति कैसे बंधन में आ जाते हैं? रजोगुणी व्यक्ति के पास आकर्षण होता है। रजोगुणी व्यक्ति नित्य मय के भाव से कार्य करता है। वो क्या सोचता है? आई एम द डूअर, मैं कर्म कर रहा हूं, मैं करता हूं, सब कुछ मैं ही तो कर रहा हूं। संसार में यदि मैं नहीं हूं तो संसार का क्या होगा? सारे कर्म यदि हो रहे हैं तो मैं कर रहा हूं, इसलिए हो रहे हैं, मैं कर रहा हूं, यह भाव उसके अंदर आ जाता है। इसलिए जो कर्म करता है उस कर्म का जो फल होता है फल के प्रति आसक्त हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है ये मैं कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। यह भाव होने के कारण जो कुछ भी कर रहा हूं उसका जो फल है वो फल के प्रति आसक्त हो जाता हूं, और जब फल के प्रति आसक्त हो जाऊंगा तो बंधन में फंस जाऊंगा। पिछला श्लोक कुछ तुम भी स्मरण है ना थोड़ा बहुत? तो रजोगुण का बंधन आ जाएगा, रजोगुण हमको बंधन में डाल देंगे। तीसरा क्या है? तमोगुण। अब तमोगुण की क्या बात है? तमोगुण के प्रभाव में जो व्यक्ति होते हैं महा आलसी होते हैं, नित्य निद्रा में रहते, सोते रहते हैं दिन रात, प्रमाद में रहते हैं, आलस्य, अस्वच्छता, निद्रा, ये सब प्रकार के दोष उनमें रहते हैं, और इसके कारण वो बंधन के बाहर ही नहीं फंसे रहते हैं पूरी तरह से, क्योंकि वो जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही नहीं समझते। कर्तव्य क्या है इसको ही नहीं समझते, तो इसलिए वो बहुत बड़े भयंकर रस्से से बांध दिए जाते हैं, जिसका नाम है तमोगुण। तो ये तीन रस्से हैं जिससे हम बद्ध हो चुके, जिससे हम बंध चुके, जिसके द्वारा बंध चुके। भगवान इसमें कह रहे हैं जो कृष्ण कॉन्शियस होते हैं वो इन रस्सों से नहीं बंधे, इन रस्सों के बंधन में वो नहीं आते। परंतु यह जो माया है, श्रीमद् भागवतम में दशम स्कंद में वर्णन है, क्या कहते हैं? विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, संपूर्ण जगत को इसने यया सम्मोहितम, सम्मोहित कर दिया। किसने? विष्णुर माया भगवती, ये भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की माया है, कोई साधारण शक्ति नहीं है। तीन गुण या तीन रस्ते हो गए ऐसा नहीं है, ये कोई साधारण शक्ति नहीं है, ये भगवान विष्णु की माया है। इसका अर्थ यह होता है कि यह जगत भगवान विष्णु की माया के द्वारा सम्मोहित। देखिए यही भगवान भगवद गीता में क्या बोल रहे हैं, और यही भगवान अपनी माया को बनाए हुए हैं। भगवान कभी कभी मन में किसी भी संशय बहुत बढ़ता है, भगवान डबल स्टैंडर्ड वाले हैं क्या? एक बार तो यहाँ ये बोल रहे हैं, उधर श्रीमद भागवतम में कहा गया कि विष्णु और माया भगवती, भगवती विष्णु की माया है, याति सम्मोहितम जगत, सारे जगत को सम्मोहित कर दिया है इसे। तो कभी कभी मन में यह संशय आता है, परंतु भगवान क्या करते हैं, भगवान भगवान है, नियंत्रक है, निर्माता है, हमारी इच्छा के अनुसार उन्होंने सब कुछ निर्माण कर दिया, हमारी इच्छा के अनुसार, भगवान की इच्छा नहीं थी, हमारी इच्छा थी, हमको एंजॉय करने की इच्छा थी। तो एंजॉयमेंट का जो फॉर्मूला है, एंजॉयमेंट का तो फॉर्मूला ही यही है ना, हमको एंजॉय करना था, हमने भगवान से कहा भगवान मुझे एंजॉय करना है, आप कुछ व्यवस्था करो, तो उन्होंने क्या किया, विष्णु और माया भगवती, उन्होंने भगवत भगवती जो उनकी शक्ति है उनको आमंत्रित किया, और वो भगवती को, वो माया शक्ति को कहा, हे देवी इन सबको एंजॉय करना है, कुछ ऐसा कुछ घटक बनाओ, ऐसा कुछ फॉर्मूला बनाओ जिसके कारण यह जीव जो सोच रहा है, जो विचार कर रहा है, उस विचार के अनुसार भोग भोगे। ये हमारी इच्छा थी, हमारी इच्छा थी इसलिए सारे संसार का निर्माण हुआ, हमारी इच्छा थी इसलिए माया देवी का निर्माण हुआ, हमारी इच्छा थी इसलिए गुणों का निर्माण हुआ, हमारी इच्छा थी गुणों को भोग रहे। अब भगवान की क्या इच्छा है ये आगे हम देखेंगे, अभी तक हमारी इच्छा का विचार हो रहा, ये हमारी सारी इच्छा है, बंधन में आने की इच्छा हमारी है, भोग भोगने की इच्छा हमारी है, और इसलिए माया के माध्यम से भगवान विष्णु ने हमारे लिए सब कुछ उत्पन्न कर दिया है। ठीक है, ये लो आप इसको भोगो। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में एक श्लोक कहते हैं, यया सम्मोहितो जीव आत्मानां त्रिगुणात्मकम्, यया सम्मोहितो जीवम आत्मानां त्रिगुणात्मकम्, कहते हैं बद्ध जीव भौतिक जगत में अपने आप को, स्वयं को ये तीनों गुणों की उपज मानता है, अर्थात वो क्या मानता है, ये तीनों गुणों से जो कुछ बन गया है आत्मानं त्रिगुणात्मकम्, ये सोचता है कि ये सब कुछ जो बना हुआ है तीन गुणों से ही मेरा है, यही मुझे चाहिए, यही मेरे लिए है और मैं इसके लिए हूं, मेड फॉर इच अदर। ये जो त्रिगुण से बने हुए यया सम्मोहितो जीव, सम्मोहन की अवस्था है, मोहित अवस्था है, मोह की अवस्था है, परंतु क्या सोचता है, यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मक, ये त्रिगुण जो है ये त्रिगुण मेरे है, त्रिगुण से जो कुछ बना गया है, बनाया गया है ये मेरे लिए है, और मैं भी जो हूं ये इनको भोगने के लिए हूं, साथ ही सब कुछ मेरे लिए है और मैं इनके लिए। यह जो जगत है इसको अपने से भिन्न नहीं मानता है, अपने शरीर से, अपने शरीर को जगत का मानता है, कहते हैं संसार से दूर होना चाहिए और परमात्मा से पास रहना चाहिए, संसार से भिन्न होना चाहिए और परमात्मा से अभिन्न होना चाहिए, क्यों, संसार तत्व से दूर रहना चाहिए, भगवत तत्व के पास जाना चाहिए, क्यों, सिंपल लॉजिक, क्यों ये सब क्यों, संसार हमारे से भिन्न ही तो है, हम अंश किसके हैं, आत्मा अंश किसका है, तो किसके पास जाना चाहिए, परमात्मा तत्व का विचार करना चाहिए, भगवत तत्व का विचार करना चाहिए, आध्यात्मिक विचार करना चाहिए, क्योंकि वो और हम एक हैं, अंश है हम, होता क्या है, जो हम नहीं है हम वो बनना चाहते हैं, और बनना नहीं चाहते उसी को अपना मानते ही सब। मेरा ही है, यही रियल है, मैं इसके लिए हूं, ये मेरे लिए है। सिनेमा सब लोग देखते हैं, थिएटर में सब लोग देखते हैं, जो बड़े लोग सिनेमा देखते हैं, एडल्ट बड़े लोग सिनेमा देख रहे हैं, उस सिनेमा में जो कुछ भी दिखाते हैं मूवी में, समझदार व्यक्ति होते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत बढ़िया, वाह, हंसते हैं, खेलते हैं, कुछ ऐसे उसमें ऐसे कुछ क्षण होते हैं उस मूवी में, बड़े दुख भरे होते हैं, बहुत ही दुख भरे होते हैं, लेकिन फिर भी हम एंजॉय करते हैं, क्योंकि जब मैं वो सिनेमा देखता हूं तो मैं एंजॉय इसलिए करता हूं, भले उसमें दुख क्यों ना हो। कई लोग मरते हुए दिखाते हैं, कई आग लग गई, कई कुछ क्या क्या हो गया, लेकिन मैं वाह वाह बहुत अच्छा, वो डायरेक्शन अच्छा है डायरेक्ट, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैं अपने आप को उस स्क्रीन के कैरेक्टर से, स्क्रीन के जो कैरेक्टर्स है उनसे मैं अपने स्वयं को भिन्न मानता हूं। मैं नहीं हूं, मेरे लिए नहीं है, मैं उसके लिए नहीं हूं, वो मेरे लिए नहीं है, वो स्क्रीन है। मैं अपने आनंद को अपने ही तरीके से देखता हूं, परंतु यही बात मान लो कोई साधारण बालक है, छोटा बालक, बच्चा 4-5 साल, और वो मूवी देख रहा है और उसमें शेर आ गया, हाँ? क्या होगा? बहुत रोएगा बच्चा, बहुत रोएगा, इतना रोएगा कि आप उसको संभाल नहीं पाएंगे, इतना रोएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? वो क्या मान रहा है? ये मेरे लिए है, मैं इसके लिए हूं, ये मेरे जीवन की घटना है, मुझे खा जाएगा, मुझे खा जाएगा, रोता है, कुछ भी समझाइए आपको नहीं समझेगा, और रोएगा भयंकर, भयभीत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो बुद्धि है, उसकी जो अटैचमेंट है, उसकी जो समझ है, वो उसको क्या बता रही है? दिस इज रियल, जो स्क्रीन पे दिख रहा है दिस इज रियल, क्योंकि अज्ञान है। सेम हमारे जीवन भगवान सेम बात बता रहे हैं, एग्जैक्टली सेम भगवान कह रहे हैं, जो अज्ञानी होते हैं जैसा बालक, जो अज्ञानी होते हैं वो इसको स्क्रीनशॉट नहीं समझते हैं, अर्थात यह नहीं समझते कि उनसे ये भिन्न है, ये तो गुणों की कमाल है, जो कुछ भी हो रहा है ये तो गुणों का कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन, गुणों की रिएक्शन है, गुणों का कार्यकलाप है। मैं भिन्न हूं, आत्म भिन्न है, आत्म तत्व भिन्न है, परंतु वो क्या सोचता है? नहीं नहीं नहीं, इससे तो मुझे आनंद आएगा, या मुझे तो ये खा जाएगा, या मुझे तो यही आनंद देगा, है नहीं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और इसलिए हम इन तीनों गुणों को समझ नहीं पाते हैं, ज्ञान को समझ नहीं पाते हैं, और इसलिए जीवन का उद्देश्य भूल जाते हैं। क्यों जीवन का उद्देश्य भूल जाते हैं? इतना आसान बात है, जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, कहां से आया हूं, कहां जा रहा हूं, कैसे जाऊंगा, क्या प्राप्त करना है, ये सारे प्रश्न हैं, इन सबको भूल जाते हैं, सारे प्रश्नों को भूल जाते हैं, और स्क्रीन पे जो देखते हैं जो उससे प्रभावित हो जाते हैं, सम्मोहित हो जाते हैं, कभी भयंकर दिखता है, कभी अच्छा दिखता है, कभी बहुत सुंदर सिनेमा दिखता है, बच्चा बहुत हंसता है, खेलता है, एंजॉय करता है, कभी शेर दिख जाता है, बहुत रोता है। ये तीनों गुणों की स्क्रीन ऐसी है, कभी बहुत अच्छा सीन सामने प्रकट कर देती है, कभी बहुत बुरा सीन सामने प्रकट कर देती है। ये सीन को देखते देखते या सीन्स को एक्सपीरियंस अनुभव करते करते मैं उद्देश्य भूल जाता हूं, मेरा उद्देश्य ही मैं भूल जाता हूं जीवन का। बहुत डेंजरस, बहुत भयंकर अवस्था है। प्रकृते गुण समूढ़ा, समूढ़ा शब्द में शब्द है समूढ़ा, समूढ़ा का अर्थ है सम्मोहित, सम्मोहित होना। सम्मोहित का अर्थ क्या होता है? बेहोश हो जाए, भ्रमित होना। सम्मोहित होना अर्थात हिप्नोटाइज, जब कोई किसी को हिप्नोटाइज कर देता है तो भ्रमित तो क्या कभी कभी बेहोशी हो जाता है, होश ही नहीं रहता है। अभी कोई हिप्नोटाइज वाला आ गया और हमको कहे कि आप कश्मीर में हैं, हमको हिप्नोटाइज कर दे और आप कश्मीर में हैं, तो हम क्या करेंगे? तुरंत भाग निकलेंगे अपनी जान बचाने के लिए। कश्मीर में तो फ्लड आ गए, भागो 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 भागो, सब भाग जाएंगे। सब कोई भ्रमित हो जाता है, बेहोश हो जाता है, होश में नहीं रहता है। जैसे कोई मदिरा पी लेता है, अल्कोहल पी जाता है, तो उसको होश नहीं रहता है, क्या बोलता है, क्या करता है, क्या सोचता है। उसी प्रकार से प्रकृते गुण समूढ़ा, समूढ़ा अर्थात बेहोश, सम्मोहित अर्थात बेहोश या गहरी नींद में, समझिए नींद में होना या बेहोश। तो प्रकृति के गुणों ने, ये जो तीन गुण है ना, ये प्रकृति के गुणों ने जीवों को बेहोश कर दिया है। प्रकृति के तीन गुणों के कारण हम निद्रा अवस्था में चले गए, बेहोश हो गए, सब सारे जीव बेहोश हो गए, होश ही नहीं है। बेहोश हो गया अर्थात क्या? होश ही नहीं, गहरी नींद में है एकदम। इसका अर्थ क्या होता है? सम्मूढ़ा, यहां कहा गया है सम्मूढ़ा अर्थात सम्मोहित अर्थात बेहोश अर्थात होश नहीं है अर्थात क्या भूल गया है? बेहोश हो गया अर्थात कुछ तो भूल गया है, रियलिटी भूल गया है। बेहोश का किसको कहते हैं? बेहोश जो जिस होश में नहीं, होश किसको कहते हैं? जो रियलिटी है उसको होश कहते हैं। तो ये भूल गया है, क्या भूल गया है? भगवान कृष्ण के साथ के संबंध को भूल गया है। सम्मूढ़ा अर्थात श्री कृष्ण के साथ अपना संबंध भूल गया है और यह संबंध भूलने के कारण यह निद्रा अवस्था प्राप्त किया था, बेहोशी अवस्था प्राप्त किया था, स्वप्न अवस्था प्राप्त किया, स्वप्न निद्रा में है, सो गया, सम्मोहित हो गया, निद्रा अवस्था प्राप्त की है। निद्रा अवस्था में क्या होता है? स्वप्न देखते हैं ना, क्या होता है निद्रा में? स्वप्न, स्वप्न की जगत में रहता है। अर्थात यह जो जगत है, अभी हम वास्तविक बैठे हुए हैं परंतु हम निद्रा अवस्था में, वास्तविकता हम निद्रा अवस्था में, क्यों? क्योंकि जो रियल अवस्था है, जो सत्य अवस्था है, वो क्या है? कृष्ण का हमारा संबंध समझना। केवल समझने से काम नहीं चलेगा, उसका अनुभव करना। परंतु कृष्ण के साथ हमारा जो संबंध है, इसका ना तो अनुभूति हो रही है ना ज्ञान है, इसलिए हमारी जो अवस्था हो गई है वो ऐसी अवस्था हो गई मानो हम सब सो रहे हैं, निद्रा अवस्था में चले गए और गहरा सपना देख रहे, लेकिन स्वप्न, स्वप्न की अवस्था में हम आ गए हैं। अब यदि कोई सोया, मान लो स्वप्न, कोई सो रहा है, सम्मोहित हो गया है, कोई सोया है, तो कैसे जगाएंगे उसको? क्या तरीका है, कैसे जगाएंगे? मान लो मैं सो गया हूं, इतना सुंदर स्वप्न देखा, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, कभी कभी पानी डाल के भी उठते नहीं लोग। आज यदि कोई बहुत ही सुंदर स्वप्न देख रहे हो तो ऐसी अवस्था होती है, कुछ कुछ लोग तो नहीं उठते। स्वप्न ऐसी, ऐसे स्वप्न होते हैं आकर्षित करने वाले, कैसे जगा जाए, यदि स्वप्न में ही मैं हूं तो प्रयास किया जाएगा, आवाज किया जाएगा बड़ा बड़ा, कुंभकर्ण को उठाते तो क्या करते थे, बड़ा आवाज करते थे, ध्वनि नगाड़े बजाते थे, कुछ आवाज करते, इसकी भी एक विशेषता है, आवाज जरूर करते हैं। मान लो मैं स्वप्न देख रहा हूं, जो स्वप्न में देख रहा हूं अति सुंदर स्वप्न है और उस स्वप्न में ही आवाज है, समझ गया, स्वप्न में ही मैं देख रहा हूं कि बहुत ही सुंदर फाइव स्टार होटल में बैठा हूं, 10 स्टार होटल में, तो वहां इतना सुंदर म्यूजिक बज रहा है, कुछ बज रहा है वहां। आजकल के लोग जो स्वप्न देखते थे उसमें वो एकदम वेस्टर्न म्यूजिक बजते हुए देखते हैं, जैज बैज डीजे सीजे जो भी है, इसका आवाज जो स्वप्न में धालन 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 स्वप्न में सुन रहे, स्वप्न क्या उठ सकता है, उसको तो और अच्छा लगेगा, हाँ विल एंजॉय। स्वप्न का जितने भी आवाज है ऑल साउंड्स, सारे आवाजों को स्वप्न में के आवाजों को एंजॉय करें, नहीं जगाना है उसको, उठाना है गहरी निद्रा से, तो उसको स्वप्न के बाहर का आवाज सुनाई देना पड़ेगा, स्वप्न के बाहर के जगत का आवाज करना पड़ेगा, बरोबर है कि नहीं, स्वप्न की आवाज तो एंजॉय कर रहे हैं और वो एंजॉयमेंट स्वप्न में ही रख रहे थे, निद्रा अवस्था में रख रही है, हम चाहेंगे नहीं उठना, स्वप्न में जो आवाज हो रहे हैं वो आवाज को हम एंजॉय कर रहे हैं, भोग रहे हैं, आनंद आ रहा है, सुख का अनुभव कर रहे हैं, वो आवाज के कारण इतना सुख का अनुभव कर रहे हैं कि नींद में से नहीं उठ सकते, 8 बज गए 10 बज गए 11 बज गए 12 बज गए 1 2 4 5 दिन निकल गया है, कई कई लोग तो दिन और रात एक साथ सो सकते हैं, क्यों ऐसे क्यों हो रहा है, उस नींद से उठने की इच्छा ही नहीं होती, ऐसे क्यों हो रहा है, उसमें जो आवाज आ रही है स्वप्न में जो आवाज आ रही है बड़े स्वीट बहुत मधुर आवाज है, नहीं उठ सकता है, यदि उठना है तो बाहर का आवाज करना है, स्वप्न के बाहर के जगत का आवाज, स्वप्न जगत के बाहर के जगत का आवाज करना है, तो इसी प्रकार से हमको जो नींद लगी हुई है इसका अर्थ यह है, चाहे आप कुछ भी कहो, जो व्यक्ति इस त्रिगुणों के आकर्षण में फंसा हुआ है, बंधन में फंसा हुआ है, वो स्वप्नवत है, वो स्वप्न ही देख रहा है, और उस स्वप्न में अर्थात उस बंधन में, उन 3 गुणों के बंधन में उसको आनंद आ रहा है, जैसे स्वप्न में जो आवाज हो रहा है उससे उसकी नींद डिस्टर्ब नहीं हो रही है, इस ऐसे ही 3 गुणों के आकर्षणों के कारण वो अपनी निद्रा अवस्था से बाहर नहीं आ पा रहा, बाजते हैं चाहे आप कुछ भी कहो उसको, वो बाहर नहीं आ पा रहा, वो मोहित है, वो निद्रा अवस्था में है, मोहित हो चुका है, जब कभी संयोग से वो ये बाहर का, बाहर के जगत का या आध्यात्मिक जगत का ध्वनि सुनेगा, क्योंकि वो तो ध्वनि डिफरेंट रहेगा, बाहरी जगत का रहे, जब वो ध्वनि वो सुनेगा तब खड़बड़ से एकदम जागृत हो जाएगा, ऐसे प्रकृति में जो कुछ भी भोग विषय है वो स्वप्नवत है, बहुत ही अच्छे स्वप्न है, वो स्वप्न को हम प्राप्त कर रहे हैं, वो सारे भोगों को हम प्राप्त कर रहे हैं, परंतु अवस्था क्या है, जो भोग स्वप्न में हम सब भोगते हैं ना, नहीं भोगते हैं, अच्छा स्वप्न दिख रहा है सब एंजॉय करते, वाह सब भोग करते, स्वर्गीय आनंद का भोग स्वप्न में कर लेते करते हैं ना, लेकिन कौन सी अवस्था में, निद्रा अवस्था, स्वप्न की अवस्था, उससे लाभ इसी प्रकार से यही स्वप्न है, इसमें भी हम सब के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, आकर्षण है, और यही बहुत अच्छा लग रहा है, और इसी को मोह कहते हैं, इसी को संमोह कहते हैं, इसी को बेहोशी कहते हैं। होश में भी हमको आना है तो हमको कुछ दूसरा ध्वनि सुनाना होगा, कोई आए जीवन में जो हमको दूसरा ध्वनि सुनाए, तब जाके हमारा होश उड़ सकता है। ये भगवान यही कह रहे हैं इसको। भगवान क्या कहते हैं, प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा, जो प्रकृति के गुणों के कारण सम्मोहित हुए हैं, अर्थात प्रकृति के गुण जो है हमको क्या कर रहे हैं, बेहोश कर रहे हैं, हम बेहोश हो गए, इतना कुछ कुछ हमारे सामने परोस के रखा है तो बेहोशी हो गए, बेहोश हो गए। हमारी तकलीफ क्या है, हमारी तकलीफ यह है वो बालक के जैसा हमारी सोच, सब कुछ हमारे सामने है लेकिन वो बालक जैसा सोचता है कि नहीं मुझे खा जाए, या बालक कभी कभी अच्छा कुछ दिखता है सुंदर सुंदर तो बोलता है ये मेरा ही है, ऐसा ही मुझे चाहिए, यही मुझे चाहिए, बाल्यावस्था में ये होता है ना। उसी प्रकार से हमारी हमारा दोष यही है कि यही मुझे चाहिए, ये अच्छा दिख रहा है यही मुझे चाहिए, यही मुझे चाहिए, इसी को कहते हैं बेहोश। जितना संसार के पीछे भागोगे उतना ही संसार दूर दूर भागेगा, जितना संसार के पीछे भागोगे उतना ही दूर दूर भागेगा, घूमते रहो भागते रहो भागते रहो भागते रहो, और जितना भगवान की ओर जाओगे उतने भगवान पास में, जितना परमात्मा की ओर जाओगे उतना परमात्मा तत्व पास में आएगा, जितना संसार की ओर भागोगे उतना संसार दूर जाएगा, बताइए किसकी ओर भागना आसान है, किसकी ओर भागना आसान, भगवान की ओर भागना आसान है कि भगवान की ओर भागने से संसार किसका है, संसार किसका है, भगवान का है, भगवान की ओर भागना भी आसान है, परंतु प्रॉब्लम क्या है, हम लोग बेहोश है। इस श्लोक में भगवान ने कहा सम्मूढ़, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यदि कोई आध्यात्मिक ध्वनि हमको सुनाई दे, कोई आध्यात्मिक ध्वनि हमको सुनाए, जैसे हमने कल के श्लोक में कहा था, तमस तमोगुण और रजोगुण, जब आप जप करते हो ये दोनों राक्षस अंदर बैठे हुए, तमोगुण और रजोगुण और सतोगुण, जब आप जप करते हो श्रवण करते हो सत्संग करते हो तो क्या होता है, ये दोनों हैरान हो जाते हैं, बहुत हैरान भाग जाते हैं, कॉर्नर में बैठ जाते हैं, कान में वो डाल देते कॉटन बॉल साउंड प्रूफ। तो इसी प्रकार से यदि हम ये आध्यात्मिक ध्वनि को सुनाते हैं या सुनते हैं, वो भगवान की उपदेश हो, भगवान का नाम हो, भगवान की लीला हो, कोई ग्रंथ शास्त्र हो, उसमें के उपदेश यदि हम ये सुनते हैं तो ये बेहोश का आलम जो है वो खत्म हो जाएगा, श्रवण करना होगा तभी जाके बेहोश के बाहर हम आ जाएंगे, तभी जाके हमारी निद्रा भंग हो जाएगी, स्वप्न अवस्था भंग हो जाएगी, और हमको यह आध्यात्मिक ध्वनि सुनने की रुचि हो, इसलिए सत्संग करना आवश्यक है, इसलिए सत्संग में जाना आवश्यक है। बड़े भाग्य की बात है, भक्त लोग हमको प्राप्त होना, भक्त हमको प्राप्त होना, भक्त हमारे जीवन में आना, सत्संग हमको प्राप्त होना, भक्तों का संग मिलना, यह हमारा भाग्य है, और इन भक्तों को या इन भक्तों के साथ संबंध बनाए रखना यह हमारा हुनर है। भक्त हमको प्राप्त होना यह हमारा भाग्य है, भाग्य से भक्त की संगत प्राप्त होगी, बहुत बड़ा भाग्य, भगवान की कृपा है, मिल गया, सत्संग हो रहा है, सब भक्त एक साथ आ रहे हैं, बड़ी कृपा है भगवान, बड़ा भाग्य है। परंतु इन संबंधों को, भक्तों के साथ संबंधों को बनाए रखना, ये हमारा हुनर है। नहीं, प्रत्येक व्यक्ति में ये हुनर होना चाहिए। इसकी जो व्यक्ति ऐसे भक्तों के साथ संबंध नहीं रख पाता है, अर्थात वो अंडरस्किल है, उसके पास हुनर नहीं, बेहोशी है। क्यों क्यों ये आवश्यक है भक्तों का संग या भक्तों के साथ संबंध? क्योंकि ये भक्त लोग जो ध्वनि, जो बातचीत करते हैं, जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जो भगवान का नाम चिंतन जप करते हैं, भगवान की लीला कथाओं का चिंतन स्मरण नित्य करते रहते हैं, उसके कारण हम नित्य होश में रहते हैं। स्वप्न अवस्था में नहीं जाते हैं, नित्य होश में रहते हैं। और इसलिए यह स्किल हमने प्राप्त अवश्य करना चाहिए, बाकी दूसरा स्किल ना रहे तो भी चलेगा। यह स्किल, यह हुनर हमारे पास अवश्य होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं, तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्न विचारये। उन अज्ञानी था मंद पुरुषों को कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति विचलित न करे। देखो भगवान क्या कह रहे हैं, वार्निंग है। किसको बता रहे हैं भगवान? कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति को बता रहे हैं, अर्थात अर्जुन को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? जो कृष्ण भावना भावित है, जो भक्त है, उन भक्तों को भगवान बोल रहे हैं, अभक्तों को विचलित मत करो। बड़ी विशेष बात है इस श्लोक में। भगवान क्या कह रहे हैं? अभक्तों को विचलित मत करो। अर्थात अकृष्ण विद, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो कुछ तो जानता हो परंतु सब कुछ नहीं जानता। अकृष्ण विद अर्थात कुछ तो जानता है, थोड़ा बहुत जानता है परंतु सब कुछ नहीं जानता है, थोड़ा बहुत जानता है। ऐसे लोगों को विचलित मत करो। थोड़ा बहुत तो जानता है, सब कुछ नहीं जानता है, ऐसे लोगों को हे भक्तों कदापि विचलित न कीजिए, उनको विचलित न करो। जैसे सकाम कर्मी व्यक्ति जो होता है वो क्या करते हैं, वो शास्त्र के अनुसार सकाम कर्म तो करते हैं, शास्त्र के अनुसार करते हैं सकाम कर्म, परंतु अनित्य भोगों की कामना रखते हैं। जो अनित्य है, नित्य नहीं है, क्षणिक है। सकाम कर्मी लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, शास्त्रों के अनुसार कर्म करते तो है परंतु क्षणिक भोगों का ध्यास उनको रहता है। जैसे कि नवरात्रि आ रही है, बहुत लोग 9 दिन पक्का उपवास करते हैं, इतना भयंकर उपवास करते हैं, कोई कोई तो जल ग्रहण भी नहीं, पानी भी नहीं, 9 दिन इतने पक्का उपवास। शास्त्र में वर्णन है उपवास, तपस्या करनी चाहिए। ये तो राक्षस भी समझते हैं कि तपस्या करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र में लिखा तपस्या करनी चाहिए, सब समझते हैं, राक्षस भी समझते हैं, मनुष्य भी समझते हैं, वो भी तपस्या करते हैं, मनुष्य भी तपस्या करते हैं, 9 दिन तपस्या करते हैं शास्त्र के अनुसार, एकदम शुद्धता से करते हैं। लेकिन क्या उद्देश्य होता है फल प्राप्ति? क्या भगवान से या शास्त्र के अनुसार कर्म करके करते हुए फल की इच्छा रखना गलत है? सब अनित्य है, तो शरीर भी अनित्य है, क्योंकि वो कर्म करते हैं शास्त्र के अनुसार कर्म करते हैं और भोगों की या क्षणिक भोगों की इच्छा से सब कार्य करते हैं, यह भी गलत नहीं। गलत क्या है? वो अपने संबंधों को, जो भगवान के साथ संबंध होने चाहिए, वो संबंध का उपयोग केवल कुछ क्षण के लिए करते हैं, ओनली फॉर 9 days। जैसे ही दशहरा हो जाएगा, जितने प्रकार के नॉनवेज, जितने प्रकार के बन सकते हैं, वो सब बिल्कुल दशहरे के दूसरे दिन ही शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि भगवान के साथ जो संबंध था 9 दिन के लिए था, उसके कारण मुझे भोगों की प्राप्ति हो गई, क्षणिक भोगों की। अब क्या हो रहा है? भगवान को धर पकड़, धर पकड़, धर पकड़। कभी भगवान को धरते, कभी पकड़ते, कभी छोड़ते, कभी पकड़ते, कभी छोड़ते, कभी भगवान को पकड़ते, भगवान को छोड़ते, भगवान को पकड़ते, भगवान को छोड़ते। लेकिन तो भगवान तो नित्य है, और हम उनके साथ जो बर्ताव कर रहे हैं वो बर्ताव अनित्य है, वो ठीक बर्ताव नहीं है। और इसलिए इसलिए कहते हैं कि सकाम कर्मी जो व्यक्ति होता है वो शास्त्र के अनुसार कर्म तो करता है, और कर्म करके, शास्त्र के अनुसार कर्म करके फल की इच्छा भी रखता है, वो भी वहां तक भी ठीक है। आगे प्रॉब्लम ये हो जाती है, वो उसके पश्चात भगवान को भूल जाता है। वो जिस वस्तु विषय की कामना करता है, जब वो विषय वस्तु प्राप्त हो जाती है, उसी क्षण भगवान से वो दूर हो जाता है, उसी क्षण। यह इसे धोखा है। परंतु भगवान फिर भी क्या कहते हैं? कहते हैं कि इनको विचलित होते, ये काम कर्म कर रहे हैं। क्रिया और कर्म क्या है? इन लोग कर्म नहीं जानते हैं, क्रिया नहीं जानते हैं। क्रिया और कर्म की क्या है? ये लोग कर्म करते हैं, भोग को प्राप्त करते हैं, एंजॉय करते हैं, कृष्ण को भूल जाते हैं। ये प्रोसेस है, प्रोसेस को हमने अच्छी तरह से समझना चाहिए। क्रिया और कर्म में भेद समझना चाहिए। क्रिया क्या है? क्रिया के साथ जब मैं का भाव जुड़ जाता है, क्रिया, कोई क्रिया हो रही है, उस क्रिया के साथ जब मैं का भाव जुड़ जाता है, मैं का भाव रहता है, अहंकार, मैं अर्थात अहंकार, मैं का भाव रहता है, तब वह क्रिया कर्म बन जाती है। जब क्रिया के साथ मैं का भाव जुड़ जाता है, अहंकार का भाव जुड़ जाता है, तब वह क्रिया क्या हो जाती है? कर्म बन जाती है। और जब कर्म वह बन जाती है तो इसका फल भी प्राप्त हो जाता है। जब वही क्रिया कर्म में बदल जाती है तो फल प्राप्त होगा, और फल 3 प्रकार के होते हैं। इष्ट, अर्थात जो मुझे चाहिए वो मिल रहा है। अनिष्ट, मुझे बिल्कुल चाहिए नहीं था वो मिल गया। और मिश्र, थोड़ा जो चाहिए था मिल गया, थोड़ा जो नहीं चाहिए था मिश्र हो गया। जब मैं की भाव से कोई भी क्रिया की जाती है तब उसको कर्म कहते हैं। वो कर्म निश्चित तौर पे हमको फल देते हैं, और फल 3 प्रकार के होते हैं, इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित। देयर इज नो डाउट अबाउट। परंतु जहां मैं का भाव नहीं है, जहां अहंकार नहीं है, वहां क्रिया कर्म नहीं, क्रिया कर्म नहीं बनती, केवल क्रिया ही रहती है। इसलिए कर्म जो होते हैं वो कर्म होते ही नहीं है, इसलिए फल का कोई प्रश्न नहीं है। अब हमारे मन में हजारों विचार उत्पन्न होंगे। कर्म श्रेष्ठ है कि क्रिया श्रेष्ठ है? मैंने अभी जो कहा है, क्रिया श्रेष्ठ है, क्रिया की मैंने व्याख्या करी है। ऐसी क्रिया, अर्थात क्रिया के साथ जब मैं का भाव आ जाता है तो कर्म हो जाता है, और कर्म जब होते हैं तो उसके फल मिलेंगे, और उसके फल 3 प्रकार के होते हैं, इष्ट, अनिष्ट और मिश्र। तो क्रिया श्रेष्ठ है कि क्रिया किसको कहते हैं? क्रिया उसको कहते हैं जिसमें मैं का भाव ही नहीं है, अहंकार ही नहीं है, और बिना अहंकार की जो क्रिया हो रही है उसको कर्म कहते ही नहीं है। जब कर्म ही नहीं होते हैं
तो फल का कोई संबंध ही नहीं है। जब फल ही नहीं तो इष्ट अनिष्ट और मिश्र का भी संबंध नहीं है, और इष्ट अनिष्ट मिश्र नहीं है तो बंधन का भी कोई संबंध नहीं।
अब प्रश्न यह है, क्रिया श्रेष्ठ है कि कर्म श्रेष्ठ है?
क्यों श्रेष्ठ है? अब मैं का भाव नहीं है, मान लो मैं के भाव से मैं कुछ नहीं क्रिया करता हूं तो ऐसा चलेगा? यह आसान है कि कठिन? आसान कैसे और कठिन कैसे?
प्रैक्टिकली करेंगे तो आसान है, सोचेंगे तो
एकदम सही बात है। जैसे भगवत गीता के विषय में होता है, किसी को भगवत गीता के विषय में कहो भगवत गीता है, भगवान की दिव्य ध्वनि है, कंपन हो रहा है प्रत्येक पेज पे पुष्ट पे, किसी को पूछिए भगवत गीता, बोले बहुत कठिन क्यों? केवल सोच रहा है, पढ़ नहीं रहा है। पढ़ेगा तो आसान है, पढ़ ही नहीं रहा है, केवल सोच रहा है तो कठिन। प्रयास करें सिंसियरली प्रामाणिकता से तो आसान होते होते जाएगी, कुछ तो भी हमको ज्ञान प्राप्त होगा। उसी प्रकार से क्रिया और कर्म, क्रिया श्रेष्ठ है, ठीक है, क्रिया श्रेष्ठ है। मैंने प्रश्न पूछा क्या ये कठिन है या आसान है, तो उत्तर में यह मिला कठिन भी है और आसान भी है। कठिन कब है? जब केवल विचार ही करते बैठेंगे, केवल सोचेंगे तब वो कठिन है, और जब उसको आचरण में लाएंगे तब वो अपने आप आसान होते जाए, अपने आप आसान होते जाए। जैसे उदाहरण, हमारे इसमें से बहुत से सारे भक्त लगभग जब चाय पीते थे तब आपको कहा गया था चाय मत पीजिए, आपने कई दिनों तक सोचा, जब आप सोचते थे तब बहुत कठिन लगता था, नहीं सोच रहे थे केवल, और जब आपने उसको अप्लाई किया आचरण में लाया तब आप कितने साल से सब लोग, कितने लोग तो चाय का नाम देंगे, कुछ कठिनाई लग रही है कि? एनी डिफिकल्टी? कोई डिफिकल्टी नहीं, जितना सोचेंगे उतनी डिफिकल्टी ज्यादा होगी। यदि कोई श्रेष्ठ कार्य हमको करना है, क्रिया करना है, तो सोचिए मत, क्या कीजिए, स्टार्ट, गेट सेट रेडी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो जो व्यक्ति कृष्ण को केंद्र में मानकर उनकी प्रसन्नता के लिए क्रिया करता है, उनकी प्रसन्नता के लिए जो भी कार्यकलाप करता है वो क्रिया है, उसमें उसके अंदर मैं का भाव नहीं रहता। हमने पिछले श्लोक में देखा था मैं का भाव क्यों रहता है, जो भी कार्य कर रहा हूं मैं कर रहा हूं ऐसा भाव क्यों रहता है? क्योंकि वो यह भूल जाता है कि यह कार्य जो हो रहा है वो गुणों के प्रभाव से हो रहा है, गुण एक्चुअली ये कार्य करवा रहे हैं, ये भूल जाते हैं ना। पिछला श्लोक याद है? पिछले श्लोक में यही चर्चा हुई पूरा 2 घंटा। क्यों व्यक्ति सोचता है मैं कर रहा हूं? क्योंकि वो गुणों के प्रभाव को नहीं समझ रहा है। वास्तविकता मेरे से जो कर्म हो रहे हैं, मेरे से जो कर्म करवा रहे हैं, गुण है, ये गुणों के प्रभाव में आकर मैं कर्म कर रहा हूं। यदि होते ही नहीं थे तो कर्म तो मैं करता था परंतु मैं का भाव नहीं आता, परंतु ये गुणों के कारण मैं सोचता हूं मेरे लिए, मेरे भोग के लिए, मेरा मैं, गुणों का प्रभाव। तो अर्थात कर्म मुझसे जो करवा रहे हैं वो कौन है? गुण है। मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं। वास्तविकता नींद आ रही है वो तो हमारी नित्य अवस्था ही है। कौन सी? निद्रावस्था।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
देखिए यह श्लोक बहुत ही अप्लाइड साइंस है, एकदम पूरी तरह से अपने लिए, मेरे लिए स्वयं कहा गया है श्लोक भगवान ने। यहां दूसरा शब्द आता है मंद, मंद शब्द का अर्थ क्या होता है? मंद के बहुत अर्थ होते हैं। मंद शब्द आता है, मंद शब्द के पहले मैं यह बात क्लियर करना चाहूंगा कि क्रिया और कर्म, क्रिया क्या है और कर्म क्या है। कर्म वो है जिसमें प्रत्येक कार्य करते वक्त मैं सोचता हूं कि आई एम द बेस्ट, आई ओनली एग्जिस्ट, आई एम द डूअर। तीन बातें, ये बहुत बड़ा ज्ञान है। कौन सा? आई एम द बेस्ट, संसार में मेरे से बढ़कर कोई है नहीं, सबसे बढ़कर मैं। आई एम द बेस्ट, आई ओनली एग्जिस्ट। अस्तित्व यदि किसका होना चाहिए तो केवल मेरा होना चाहिए। आई एम द डूअर, मैं ही कर रहा हूं। करने वाला यदि कोई है ये कार्य तो मैं हूं। ये गुणों के प्रभाव से ये तीनों बातें होती है, उस समय कर्म के बंधन में हम फंस जाते हैं। और भगवान कह रहे उन लोगों के ऊपर दया करो जो ऐसा सोचते हैं। भक्तों को कह रहे भगवान उन लोगों के ऊपर दया करो जो ऐसे सोचते हैं। अब मेरा प्रश्न है कितने लोग है ऐसा सोचते हैं? सारा संसार यही तो सोचता है। तो इसलिए हमको क्या करना है? सारे संसार पे दया करना। कृष्ण कॉन्शियस जो लोग हैं, भक्त जो है, उनको पहला प्रिंसिपल क्या रखना है जीवन में? दया। क्योंकि सारा संसार ऐसा सोचता है और भगवान ने कहा कि उनको विचलित मत करो, उनको विचलित नहीं करना चाहिए। फिर उसके आगे शब्द आता है मंदान, मंद। मंद शब्द की व्याख्या है, अब मंद शब्द का बहुत सारे अर्थ है। मंद अर्थात धीमा, ये लोग थोड़े धीमे होते हैं। भगवान हमको कन्विंस कर रहे हैं, भगवान भक्तों को कन्विंस कर रहे हैं क्यों इनको विचलित नहीं करना है। शायद थोड़े धीमे होते यार, स्लो। क्यों स्लो है? आलसी है। नहीं, कभी कभी शास्त्रों का अनुसार कर्म भी करते हैं लेकिन भोग में लगा देते हैं। और क्या कारण है मंद का? धीमे, धीमे। और क्या कारण है? धीरे धीरे आगे बढ़ो। ये शब्द से प्रभुपाद जी को बहुत एलर्जी होती है। करेंगे अभी इतनी क्या जल्दी है, अभी इतना क्या घाई है, करेंगे। इनको बहुत पूरा जीवन पड़ा है। धीरे धीरे भगवान यहां कह रहे इनके ऊपर दया करो, इसलिए प्रभुपाद जी ने इन जीवों के ऊपर दया की। क्या है धीरे धीरे? जिनकी यहां चर्चा हो रही है उनको धीमा कहा गया है। इसका अर्थ यह होता है एक मनुष्य जीवन मिला है, ये मनुष्य जीवन के पश्चात, मृत्यु के पश्चात पता नहीं इमीडिएट मनुष्य कहां मिलता है। इमीडिएट मनुष्य जन्म मिलेगा क्या? भरोसा? इसके पश्चात करोड़ों जन्म और किसके किसके मिले, कभी चींटी, कभी चूहा, कभी बिल्ली, कभी कुत्ता, कभी क्या क्या बन गए, क्या पता है किसके कर्म धर्म संयोग, किसको क्या पता है। परंतु फिर भी यह लोग क्या करते हैं? धीमे चलते हैं। इस मनुष्य शरीर के जितने वर्ष मिले हैं, जितने आयुष्य मिला है, उसको फास्ट, सारे कार्यकलाप, मुख्य उद्देश्य एकदम सुपर स्पीड से दिल्ली जाना है। फटाक से दिल्ली में नहीं जाते, एरोप्लेन में बैठ के नहीं जाते, बैलगाड़ी में बैठ के जाते दिल्ली। बॉम्बे से निकले दिल्ली की ओर बैलगाड़ी में, रास्ते में बहुत सारे देवी देवता मिलते हैं, सबका पूजन करते हैं। 33 कोटी है, दिल्ली को जाना है, रास्ते में 33 कोटी देवी देवता मिलेंगे, प्रत्येक का पूजन करना है। दिल्ली कब पहुंचोगे? कलयुग के लिए बैलगाड़ी में बैठना, अरे कोई आदमी, कोई व्यक्ति को आप बैलगाड़ी में बैठ के ऑफिस में जाते हुए देखा समझो, आप क्या बोलेंगे उसको? कितना धीमा है, कितना मंद है। भगवत गीता कहती है, भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं, क्योंकि ये लोग मंद है। क्यों मंद है? क्योंकि वो भगवान कहते हैं मैं बारंबार उपदेश दिया हूं, हजारों शास्त्र में उपदेश दिया हूं, अनेकों पुराणों में उपदेश दिया हूं। ये क्या है? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गति अन्यथा। कलयुग में दूसरी गति नहीं है, हरिनाम की गति है, हरिनाम से ही गति है। लेकिन मैं बैठा हूं बैलगाड़ी में, चलता हूं धीरे 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 धीरे। इसलिए भगवान इस श्लोक में यह शब्द विशेष कर कहते हैं मंद, यह लोग शास्त्र का आधार है इनके पास, शास्त्र को मानते हैं लेकिन उसके अनुसार जब वो कुछ करने जाते हैं अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, तो वो कोई साधारण अनुष्ठान नहीं रहते हैं। कोई अनुष्ठान साधारण नहीं होता है, कितने सारे तो देवी देवताएं हैं और कितने सारे तो अनुष्ठान है, और शास्त्र पे आधारित भी गलत नहीं है, सही है। परंतु स्पीड तो देखिए, इतना सब करने के लिए जीवन कितना है और अनुष्ठान कितने हैं। इसलिए भगवान कहते परंतु फिर भी ये लोग मानेंगे नहीं आपका। इसलिए कहा गया विचलित न कीजिए इनको, न विचलित, विचलित एकदम परफेक्ट श्लोक, विचलित नहीं कीजिए। क्योंकि विचलित इसका कंक्लूजन भी बहुत अच्छा है, 5-10 मिनट ज्यादा हो गए श्लोक में, परंतु इसका सार बहुत ही सुंदर सार है। तो ये मंद है, चलने दो इनको, मंद तो मंद गति से चलने, परंतु भाग्यशाली तो वो है जो पटाख से फ्लाइट का टिकट निकालेंगे दिल्ली पहुंच जाते हैं 1 घंटे में दिल्ली। वो क्या है, भगवान कहते सततम चिंतयन्तो मां गतंश गुणवता। फिर भगवान कहते अनन्य चिंतयन्तो मां ये जनहा परिपासते, अनन्य मेरा चिंतन करो, येषां इत्यादिता योगक्षेम महाम। उसको जो कुछ भी नहीं है, जो कमी है मैं उसको प्रदान कर देता। कई श्लोकों में भगवान ने कहा उसको क्या, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि। परंतु यह सब जो कुछ भी नहीं करता है वो व्यक्ति बैलगाड़ी में बैठा है, धीरे धीरे चल रहा है, परंतु आपको कोई अधिकार नहीं है कि उसका ट्रैक बदल दे। आप ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसको भला बुरा कहे, क्या बैलगाड़ी में बैठा है चल, नहीं ऐसा नहीं कह सकते, न ऐसा विचलित नहीं करना है। भगवान कह रहे भक्तों को, कृष्ण कॉन्शियस भक्तों को कह रहे थे उनको विचलित नहीं करना। तो दूसरा अर्थ होता है मंद का आलसी, आलसी होते हैं ये प्रकार मंद, अर्थात आलसी लोगों के लिए भी मंद कहा गया है। ये लोग अपने घर परिवार के कार्य में इतने व्यस्त रहते हैं, इतने व्यस्त रहते हैं, सत्संग आध्यात्मिक कार्य आध्यात्मिक सेवा बोलो तो 101 डिग्री बुखार है। कुछ थोड़ा भी घर में काम है और सत्संग है, क्या है बहुत बुखार है, 101 डिग्री बुखार है, टेम्परेचर बढ़ गया। सत्संग के लिए आध्यात्मिक कार्यों के लिए ये लोग बहुत आलसी होते हैं। दूसरे प्रकार के, पहला प्रकार जो होता है मंद अर्थात धीमे गति होता, धीमे धीमे करना पसंद करते हैं। दूसरे जो होते हैं वो आलसी होते हैं, वो तो बिल्कुल कुछ भी नहीं करते हैं। यदि कभी कुछ आप बोलो भी, इनवाइट भी करो तो क्या बोलते हैं, घर में बहुत काल, आलस। तीसरा क्या है, तीसरे प्रकार के लोग हमने बहुत देखे, तीसरे प्रकार के लोग है दीर्घसूत्री। क्या है दीर्घ सूत्र, टालने में एकदम एक्सपर्ट रहते। तो मुझे इस शुक्रवार को आए, आऊंगा आऊंगा बराबर, गुरुवार को फोन किया, कल शुक्रवार आए, आऊंगा आऊंगा शुक्रवार को 3 बजे फोन किया, अरे प्रभु जी बिल्कुल मैं आ ही रहा था, अभी नेक्स्ट शुक्रवार को आता हूं। ये शुक्रवार को जरा गड़बड़ हो गया, नेक्स्ट शुक्रवार आता है, फोन ही नहीं उठाते, नेक्स्ट शुक्रवार गए, आगे का शुक्रवार आता है, अरे प्रभु जी बस ये शुक्रवार छोड़ के ना अगले शुक्रवार को मैं बराबर आ जाऊंगा। दीर्घ सूत्र, आध्यात्मिक कार्य को हो सके उतना टालना, जितना हो सके एट बेस लेवल उसको टालना है। जगन्नाथ जी मंदिर, भगवान जगन्नाथ जी को जानते हैं ना, उनके मंदिर में एक एक व्यक्ति थे जो जल सेवा करते थे, रोज जल सेवा करते थे। वो जल सेवा में है वो इतने मग्न होते थे, जल अर्थात जल पानी लाना साफ सुथ ये मतलब सबको देना है, जो जहां जहां जल की आवश्यकता है देना पहुंचाना जल और व्यस्त रहते थे। एक बार एक दिन उनको समय मिला, थोड़ा जल्दी छुट्टी राहत मिली, थोड़ा समय था। उन्होंने सोचा अभी जगन्नाथ जी बहुत ही सुंदर रूप में हैं, चलो जगन्नाथ जी के दर्शन कर ले क्या। तुरंत दूसरा विचार मन में आया, यहीं तो रहते हैं अपन, रोज तो मंदिर में सेवा है, कल कर लेंगे। नहीं, फिर एक दिन रुके, दूसरे दिन फिर सब सेवा सब समय नहीं मिला, तीसरे दिन फिर समय मिला, फिर सोचे अपन यही तो है जीवन भर तो है, रोज तो भगवान की सेवा में लगे, जल सेवा कल दर्शन कर लेंगे। ऐसा करते 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 पूरा जीवन बीत गया, परंतु वो व्यक्ति ने एक बार भी दर्शन नहीं। क्यों? कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे। कोई भी अच्छा विचार यदि मन में आता है, विशेष आध्यात्मिक, कई जन्मों के पुण्य कर्म के कारण वो विचार मन में आता है, ऐसा सोचिए। आगे आध्यात्मिक विचार तो सोचिए, वो विचार आने के लिए आपके पूर्व के कई पुण्य कर्म उसके लिए जिम्मेदार है, वो पुण्य कर्मों के फल के कारण वो आध्यात्मिक विचार आ गया। जैसा ही वो आध्यात्मिक विचार आया, उसको आचरण में लाने की एक मिनट भी देर नहीं करनी चाहिए, एक सेकंड भी नहीं करनी चाहिए, एक सेकंड भी नहीं, क्योंकि वो आपके पुण्य का फल आपको देने जा रहा है। क्या देने जा रहा है? हमारे पुण्य का फल वो विचार हमको देने जा रहा है। परंतु यदि हम उसको रिजेक्ट करें या पोस्टपोन करें, पोस्टपोन पोस्टपोन करते जाए तो फल पक पक के सड़ जाएगा, वो फल जो है हाथ से निकल जाएगा और फिर बंधन में फंस जाए, बहुत बड़ा बंधन आ जाएगा। इसलिए आध्यात्मिक कार्य कभी भी नहीं टालना चाहिए, विशेषकर कृष्ण भजन में। कृष्ण भजन को हम यदि टालते रहेंगे तो अनेकों जन्मों तक तो मनुष्य का शरीर भी प्राप्त नहीं होगा, अनेकों जन्म तक मनुष्य का शरीर भी प्राप्त होगा कि नहीं होगा पता नहीं, और ये मनुष्य शरीर हमको प्राप्त हुआ उसमें हमने टालने का ही काम किया। टालते नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम, कल करे सो आज करे, आज करे सो अभी, फिर आगे क्या है? हाँ, कब करोगे? कल के लिए नहीं था, इनफैक्ट कल यदि मुझे 16 माला जप करना है, या कल मुझे यदि सत्संग करना है, या कल मुझे कुछ श्रवण करना है, या कल मुझे कुछ चिंतन करना है, तो आज ही कर, उसको आज से ही लाइए, और आज से भी नहीं अभी करो। नहीं सोची कल करूंगा परसों करूंगा, वो नहीं होएगा, नहीं, मनुष्य शरीर व्यर्थ चला जाएगा और पता नहीं अगला जन्म क्या मिलेगा, क्योंकि भगवान तो ये कहेंगे मैंने तो कई बार तुम्हारे पुण्य का फल तुमको दिया, तुम्हारे मन में विचार इंसर्ट किया लेकिन तुमने कुछ किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मनुष्य जीवन मिलने पर भी एक बार भी आत्म साक्षात्कार का प्रयास नहीं करता है। चौथा प्रकार इसका होता है, क्या होता है चौथा प्रकार? अभागा। मंद जो होते हैं ना, एक प्रकार तो धीमा होता है, यहां क्या बताया गया है, धीमा मंद शब्द की व्याख्या की गई है। मंद जो होते हैं उसमें पहला प्रकार धीमा, दूसरा प्रकार आलसी, तीसरा प्रकार दीर्घसूत्री, चौथा प्रकार चौथा प्रकार अभागा। ये करीब का लक्षण है अभागा, क्योंकि इतना मनुष्य जन्म मिला लेकिन मनुष्य जन्म में पूरे जीवन पर कभी भी आत्म साक्षात्कार का विचार मन में नहीं है, इतना दुर्भाग्य। एक बार भी जीवन में, इतने सारे जीवन में एक बार भी ये विचार नहीं आया कि मैं आत्म साक्षात्कार का प्रयास करूं? अभागा, कितना दुर्भाग्य, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य है? ये अभाग्य, ये मंद व्यक्ति के लक्षण है। फिर भगवान कहते हैं कृष्ण विदह न विचालये, सबसे महत्व का शब्द है। भगवान कहते हैं अर्थात कृष्ण भक्त या सब कुछ जानने वाले लोग जो होते हैं, सब कुछ जानने वाले अर्थात जितना आवश्यक है उतना जानने वाले जो लोग, सब कुछ तो केवल भगवान ही जानते हैं, परंतु जितना आवश्यक है उतना जानने वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो इन लोगों को, ऐसे लोगों को विचलित नहीं करते, विचलित नहीं करते। तुरंत कोई मंद मिल गया, फटाक से उसको बोलना शुरू करें, क्या तू मंद है, कैसा अपना जीवन नरक में बिता रहा है, भली बुरी सुना दिया, तो वो क्या होगा, वो रिएक्शन देगा और बल्कि ज्यादा बुरे रास्ते पे हो जाएगा, जो कर रहा है वो भी छोड़ देगा। जैसे मान लो आप मंद के पास गए, धीमा जो होता है, धीमे प्रकार का व्यक्ति, उसके पास गए, क्या तुम कर रहे हो, अपना जीवन व्यर्थ बिता रहे हो, ये सारी देवी देवताओं की पूजा में जीवन व्यर्थ बता रहे हो, बिता रहे हो, क्या धरा है इसमें, ये नवरात्रि का कर रहे हो, ये घर में गणेश जी का कर रहे हो, ये कर रहे हो, व्यर्थ है, छोड़ दो इस सबको। उसके ऊपर क्या परिणाम होगा, भगवान कहते उसके ऊपर इतना विपरीत परिणाम हो सकता है, वो सब कुछ छोड़ के एकदम नास्तिक हो सकता है। उससे अच्छा वो धीमा है तो धीमा है, बैलगाड़ी में बैठे हैं तो बैलगाड़ी में बैठने दो, कभी तो कभी वो बैलगाड़ी पहुंच जाएगी, उसके भाग्य के अनुसार कभी तो जाएगा, उसको विचलित मत करो, जाने दो, चलने दो, पहुंच जाएगा, धीमा है। लेकिन अब प्रश्न यह है, वो अब अर्जुन ने श्लोक संख्या एक में प्रश्न पूछा था, यह प्रश्न है, क्या प्रश्न पूछा था, हे भगवान मुझे युद्ध रूपी घोर कर्म में क्यों लगा। प्रश्न दूसरा मेरा यह है कि इतनी सारी बातें भगवान यहां पे अर्जुन को क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, हे कृष्ण मुझे इतने घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं, युद्ध करके क्या पाऊंगा, मुझे क्या ऐसा घोर कर्म क्यों। कृष्ण कहते हैं ये जो शत्रु पक्ष में सैनिक खड़े हैं, ये जो शत्रु सेना है, ये सारी की सारी सेना जीतने के लिए युद्ध के युद्ध कर रही है, सारी की सारी कौरव सेना जीतने के लिए युद्ध कर रही है, और उनका ये मानना है कि यदि वो युद्ध करेंगे अर्थात धर्म का पालन, युद्ध करना वो मान रहे कि युद्ध करना उनका धर्म है, उदाहरणार्थ भीष्माचार्य द्रोणाचार्य क्या मान रहे हैं इस समय, आप सोचिए यदि भीष्म देव धनुष ही नहीं उठाते, द्रोणाचार्य धनुष ही नहीं उठाते तो क्या होता, क्या युद्ध होता, और युद्ध नहीं होता तो ये जो पाप हो रहा है वो पाप तो और बढ़ता, कम होता था। अरे जब द्रौपदी जैसी रानी, महारानी का वस्त्र हरण भीष्म और द्रोण के समक्ष किया, मान लो ये युद्ध नहीं करते या धनुष नहीं उठाते और युद्ध नहीं होता, तो आगे जाके दुर्योधन तो प्रत्येक स्त्री का वस्त्र हरण करता, क्योंकि उसको अभी कॉन्फिडेंस आ गया है। द्रौपदी का वस्त्र जो महारानी है उसका वस्त्र हरण करने के पश्चात कुछ नहीं हो रहा है, तो अब ये बाकी की तो क्या बात है। परंतु आप सोचिए भीष्मदेव और द्रोणाचार्य, इन्होंने क्या किया, धनुष उठाया, वो युद्ध में सामने खड़े हैं कौरव सेना में, किस लिए खड़े हैं? वो ये जानते कि मैं युद्ध करूंगा, कि युद्ध करना मेरे लिए धर्म है, इससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ये मेरा कर्तव्य कर्म है, ये मेरी पूजा है, ये मेरा धर्म है, युद्ध कर्म करना करना मेरी मेरा क्षत्रिय धर्म है। अब भगवान यहां अर्जुन को क्या समझा रहे हैं? भगवान यहां पे समझा रहे हैं कि देखो ऐसे जो लोग होते हैं ना, अपने अनेक धर्मों का पालन करते हैं, सब लोग जो बैलगाड़ी में बैठे, जो लोग बैलगाड़ी में बैठे हैं उनका अर्थ क्या है? इनके पास अपने अनेक शास्त्रों के अनुसार अनेक धर्मों का पालन नहीं करते, इनको विचलित मत करो। यहां पे भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण ऐसे ही अपने अपने अनेक धर्मों के पालन कर रहे हैं, और इनको यह पता है कि ये धर्म का मैं पालन करूंगा तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और इसलिए ये अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं उनके तरीके से, उनके अनुसार। अब तुम कृष्ण कॉन्शियस हो, हे अर्जुन तुम कृष्ण भक्त हो, तुम कृष्ण कॉन्शियस हो, परंतु तुम इनको विचलित मत करो, युद्ध न करो, उनको करने दो। क्या करने दो? क्या करने दो? युद्ध करने दो। अर्जुन युद्ध नहीं करने की बात कर रहे हैं, परंतु कृष्ण अर्जुन को यह समझ रहे कि हे अर्जुन तुम इसको घोर कर्म समझ रहे हो, परंतु उनका यह धर्म है, और वो सोच रहे उससे उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तुम उनको क्यों विचलित कर रहे हो उनके धर्म से? मंद बुद्धि है, धीमे हैं, मंद है अर्थात धीमे हैं, अनेक धर्मों को लेके बैठे हैं, अपने अपने इंडिविजुअल धर्म को लेके बैठे हैं, उनको विचलित न करो। यदि विचलित करोगे तो वो अपना जो धर्म है उसका भी त्याग कर देंगे, और उसका त्याग कर देंगे तो संसार में पूरा अधर्म ही अधर्म होगा, है कि नहीं? ऐसे ही जो हम इतर लोगों को देखते हैं, कोई ये धर्म का पालन करता है, कोई वो धर्म का पालन करता है, कोई कोई धर्म का पालन करता है, तो कृष्ण यहां कह रहे हैं कि डू नॉट डिस्टर्ब, इनको डिस्टर्ब नहीं। अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर यहां पे दे रहे हैं। अर्जुन कह रहा है मैं मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो? तो घोर कर्म तो वो है जो युद्ध नहीं करता, युद्ध नहीं करता तो घोर कर्म होता, इसलिए कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि देखो वो लोग युद्ध कर रहे हैं, तुम युद्ध नहीं करोगे तो वो युद्ध नहीं करेंगे, उनको उनका युद्ध न करना अर्थात विचलित होना, और उनको तुम विचलित मत करो। इसलिए हे अर्जुन किसी को भी विचलित न करो, युद्ध करो, उनको विचलित न करो, यही धर्म है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। शास्त्र में अनेक उदाहरण है। नारद जी ने रत्नाकर, डाकू रत्नाकर था, पता है आपको कौन था वो? उसको नारद जी ने विचलित नहीं किया, वो आया बोला नारद जी को, हे नारद जी आपने बोला उसके अनुसार मैं देखा, मेरे कर्मों में तो कोई शेयर नहीं कर रहा है मेरे परिवार वाला, मैंने जितने भी बुरे कर्म किए वो सारे मेरे परिवार के लिए किए, और मेरे परिवार का एक भी सदस्य भी मेरे कर्मों का फल शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। आपने बराबर बोला। तो नारद जी ने तुरंत ये नहीं बोला ठीक बात है सब छोड़ के चलो हिमालय में बैठ जाओ, नहीं ऐसा बोलते तो नारद जी के ऊपर ही तलवार निकालता। नारद जी ने क्या कहा? ठीक है कोई बात नहीं, उनको उनसे मिलते रहो, आने दो जाने दो, जो भी है तुम यहां बैठ जाओ। तुम्हारा कॉन्शियसनेस क्या है? मरा मरा का कॉन्शियसनेस, मारने का कॉन्शियसनेस था ना, मरा मरा कॉन्शियस है, तुम यहां बैठो और मरा मरा करते रहो, वहां बैठा के मरा मरा वो करता रहा, विचलित नहीं किया। नारद जी ने कोई उनको अश्वमेध यज्ञ या कोई बहुत बड़ा महामृत्युंजय का अनुष्ठान या ऐसा कुछ भी नहीं कहा, यहां बैठ के कुछ भी विचलित नहीं किया, मरा मरा बोले, क्योंकि मरा कॉन्शियस है तो मरा मरा से राम राम हो गया, विचलित नहीं किया। ध्रुव महाराज की कथा, अपने पिता से नाराज हो, संकल्प किया कि मेरे पिता का जो राज्य है, मेरे पिताजी के पास जितना ऐश्वर्य संपत्ति है उससे ज्यादा मैं प्राप्त करूंगा, अपने पिताजी को दिखाऊंगा कि मैं भी आपसे ज्यादा श्रेष्ठ हूं, इसके लिए गया अपनी माता के पास। माता ने कहा जाओ जंगल की ओर, वो नारायण मिल जाएंगे। निकल पड़े जंगल की ओर, रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी को उसने सब कहा क्यों वो जा रहे हैं सब जंगल में तपस्या करने को। कहा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐश्वर्य चाहिए, राज्य चाहिए बहुत बड़ा। नारद जी ने वहां पर उनको प्रवचन नहीं दिया, अरे क्या राज्य के पीछे प्रेम, ये तो सब संसार, ये सब गुणों का प्रभाव है, ये तो सब रजस्तम सत्व का प्रभाव है, इसके बाहर आ जाओ, भक्ति करो, जप करो, तपस्या करो, ऐसा कहा नारद जी ने? उल्टा क्या कहा, ओके ठीक बात है, इस दिशा में जाओ। विचलित नहीं किया, तो आगे उसका फल क्या प्राप्त हुआ, नारायण जी रत्नाकर का वाल्मीकि हो गया। अर्जुन को भी यही भाव बता रहे भगवान, इसका फल क्या प्राप्त हुआ, अर्जुन का विजय हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्रील प्रभुपाद की जय। Thank you.